एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन होता, यमदूत। यमदूत उसको लेने आया और उसको लेके गया। तो उसके 50 पुण्य होते हैं और 50 पाप होते हैं। तो यमदूत उसको ऑप्शन देता है कि आप स्वर्ग में भी जा सकते हो और आप नर्क में भी जा सकते हो। तो वो बोलता है कि मुझे पहले दिखाओ। तो पहले यमदूत उसको स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। तो स्वर्ग में देखता है तो बहुत शांति होती है, और फिर उसके बाद वो उसको नर्क की तरफ लेके जाता है। तो देखता है नर्क में कितनी मौज है, डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है। तो यमदूत से कहता है कि मुझे नर्क में जाना है, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। तो इस आत्मा की परख शक्ति कैसी थी कि वो स्वर्ग और नरक को परख नहीं पाया। तो हज बाबा की मुरली है, परख शक्ति को तीव्र बनाओ, 1610-69 की ये मुरली है। तो हज बाबा भट्टी में आए हैं, गोपों की भट्टी चल रही है, कुमारों की भट्टी। तो बाबा ने आते ही कुछ प्रश्न पूछे कि आज बाबा क्या देखने आए हैं, आज विशेष क्या देख रहे हैं। परख शक्ति, देखने की शक्ति, देखने की शक्ति और परख शक्ति पे बोला। देखने की शक्ति और परख शक्ति कहाँ तक आई है। इस ग्रुप में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो सर्व प्रश्नों का उत्तर देने में होशियार है। दिव्य गुण मुहूर्त कहाँ तक बने हो। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने पहले परख पे बात की कि ये जो परख शक्ति होती है वो बहुत, उसकी बहुत आवश्यकता है। जब आप आसुरी संप्रदाय के बीच में कार्य में जाते हो, उनके संबंधों में जाते हो, तो आपको परख शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि जब परख शक्ति होगी तभी विजय प्राप्त, विजय बन सकेंगे। अगर परख शक्ति नहीं है तो विजय नहीं बन सकते। फिर बाबा कहते हैं कि इसको छोटी बात नहीं समझना। और गोपों को अनेक प्रकार की परिस्थिति आती है, तो उनको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए परख शक्ति की आवश्यकता है। तो जैसे बाबा ने यहाँ कहा कि अनेक परिस्थितियाँ आएंगी, अनेक संकल्प वाली आत्माएं आएंगी, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए परख शक्ति चाहिए। तो बाबा ने यहाँ 3 उदाहरण दिए जहाँ परख शक्ति चाहिए। तो हम और चर्चा करेंगे कि परख शक्ति की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो जैसे कि भगवान ने देखो क्या किया, ब्रह्मा को परख के उसका तन का आधार लेके ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा बाबा ने इतनी सारी दादियों को चुना, इतने सारे बड़े बहनों को चुना, और सब एक एक जोन इंचार्जेस है सब। अगर हम अपने आप को भी देखें तो बाबा ने सबको सिलेक्ट करके चुन के एक एक जगह पे रखा है। तो परख मतलब डिस्क्रिमिनेट करना और जांचना। तो भगवान ने भी हमको जांच कर, चुन कर एक एक जगह पर बिठाया। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारे यज्ञ में ही देखो कितने ऐसे लोग हैं जो कहाँ कहाँ थे और भगवान ने उनको चुनकर लेके आया। तो हम ऐसे ही कल विचार कर रहे थे कि हमारे यहाँ के गार्डन्स कितने अच्छे हैं यहाँ पे। तो नंजप्पा भाई कहीं एग्रीकल्चरिस्ट थे गवर्नमेंट में, है ना, और बाबा ने वहाँ से चुनकर उनको यहाँ लाया। राहुल भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि वो एक होटल में काम करते थे पहले, जीन्स पैंट और इतने बड़े बड़े बाल थे, और कैसे एक प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन जहाँ पे वो काम करते थे, और फिर वो ज्ञान में आए। तो कैसे आज वो हॉस्पिटल में, किचन में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। तो ऐसे भगवान ने हमको भी चुना है। हम जब मुंबई में थे और हम स्टेशन पे खड़े रहते थे तो हमको लगता था इतनी गर्दी, इतने सारे लोग, उसमें से मैं सिर्फ एक। तो हम भी अपने आप को देखे, रेट्रोस्पेक्टिवली जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे लाइफ में हुआ, ये होना ही था क्योंकि यहाँ पहुँचना था, अगर ये नहीं होता तो बाबा हमको यहाँ तक नहीं लाता। तो भगवान ने परखा। दूसरा होता है ब्रह्मा बाबा मम्मा, इनके सामने जो भी आत्माएं आती थी ये इनको कैसे परखते थे। एक बार मैं नलिनी बहन का अनुभव पढ़ रही थी। तो वो जब बचपन में मधुबन में आते थे तो खेलते थे, कूदते थे बाबा के साथ, और जब जाने का वक्त आता था तो बहुत रोना आता था। तो वो मैं कहते थे जब भी मैं यहाँ से जाती थी तो फिर वहाँ का संग का रंग पड़ता था। और बाबा मुझे हमेशा पूछते थे कि पीताम्बरी से शादी करोगी या सूट बूट वालों से शादी करोगी। तो वो उत्तर नहीं देते थे कुछ। तो जब वो जा रहे थे तो वो बहुत रो रहे थे, तो बाबा ने अपना रुमाल निकाला और बाबा ने उनके आंसू नहीं पूछे, बाबा ने अपने मुंह पे ही रुमाल रख के बाबा रोने लगे, पिता मेरी से शादी करोगी या सूट बूट वाला से शादी करोगी। तो उन्होंने बहुत बाबा को बोला कि मैं पीताम्बरी से शादी करूंगी। फिर एक दिन बाबा ने उनको कहा कि बच्ची आज बाबा आपको सर्वव्यापी बनाने वाले हैं। तो उनको वाइट कपड़े पहना के, फिर वो जो बंदर वाला फोटो है, आंखें ना बुरा ना देखो बुरा ना सुनो, तो कैसे बाबा ने उनको भी ऐसे परखा और आज वो क्या सेवाएं कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि प्रेम बहन है जो इतने महामंडलेश्वर इतने सन्यासियों को लेके आते हैं, तो भगवान ने चुनकर उनको कौन सी जगह दी ना जहाँ पर ये सब ज्यादा है। तो एक होती भगवान की परख ब्रह्मा बाबा। मम्मा का एक उदाहरण सुनते हैं, कानपुर में एक बार मम्मा थी तो बच्चे कैसे मम्मा बाबा की गोद में आ जाते थे। तो एक बार एक भाई था वो मम्मा की गोद में आने जा रहा था, तो मम्मा ने कहा वहीं रुक जाओ, ये काली की गोद है इसमें तुम नहीं आ सकते। तो बाद में किसी बहन ने मम्मा से पूछा कि आपने कहा, हाँ भद्र काली की गोद है ये, तो कि तो मम्मा ने बहन ने पूछा कि आपने ऐसे क्यों कहा। तो मम्मा ने कहा कि उसमें कुछ ना कुछ अपवित्र विकारी संकल्प थे, तो कैसे परख शक्ति थी वहां पे। फिर होती है ये जो धर्म स्थापक है, इन्होंने भी परखा ना, जैसे कि क्राइस्ट को दिखाते हैं कि उसने अपने स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स को परख कर फिर आगे चलाए। ऐसे ही बड़े बड़े जितने भी धर्म स्थापक आए, गुरु नानक आए, बुद्ध आए, महावीर आए, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भी विवेकानंद को चुना, चाणक्य को भी दिखाते हैं, चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त को चुन कर लाया और उसको भारत का सम्राट बनाया, अशोका को चुना। तो ये होती है धर्म स्थापक की। अब हमारी बात आती है मनुष्य की जो परख होती है, तो हमारी कहाँ कहाँ पे परख होनी चाहिए। जैसे कि हम कर्म क्षेत्र में जब आते हैं तो किसी से अगर धन की लेन देन करनी है तो हमको परख शक्ति होनी चाहिए वहां पर कि ये व्यक्ति हमको धोखा तो नहीं दे देगा। कभी कभार पैसे लेके भाग जाते, ऐसे सुनते हैं ना कि पैसे लेके भाग गए, तो ये वहां पर एक धन की लेन देन में होता है। हम बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे हमको लगता है इनको तो सब आता है, इनके तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हैं, और ज्वाइन करने के बाद हमको पता चलता है कि इनको कुछ आता ही नहीं। तो जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पे होता है। फिर होती है चीज़ों की लेन देन, हम कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि फ्रूट्स खरीदने गए या दूध खरीदने गए, तो हमको उसकी कितनी परख है। फिर जैसे कि जौहरी होता है, तो कल एक स्टोरी सुन रहे थे, एक धोबी होता है वो कहीं जा रहा होता है अपने गधे के साथ, तो उसको एक चमकीला सा पत्थर दिखता है, तो वो उठाकर कांच समझता है उसको और उसके गधे के गले में बांधकर उसको चलने लगता है। फिर आगे जाता है तो एक सुनार की दुकान पे पहुंचता है, तो सुनार उसको देखकर बोलता है कि मुझे ये 100 रुपये में दे दो, तो वो 100 रुपये में उसको खरीद के अपने उधर रख देता है। फिर एक जो हीरा जो परखने वाले होते हैं ना, वो आता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा इसके, तो मुझे ये दे दो, तो वो उसको 1000 रुपये दे देता है और वो खरीद लेता है उससे। और फिर वो उसकी पॉलिश वॉलिश करता है तो पता चलता है कि वो करोड़ों का डायमंड था। तो कैसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग परख शक्ति होती है। दूसरा, हमारी परख शक्ति प्रकृति के साथ, जैसे कि हम बादलों को देखते हैं और कभी बोलते हैं ना आज बारिश आएगी आज बारिश नहीं आएगी, या हम कहीं जा रहे होते हैं तो तभी भी हम सोचते हैं ना कि हम कितने कपड़े लेके जाए, ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँच जाए और फिर इतनी ठंडी हो। तो ये प्रकृति के साथ हमारी परख। तो बाबा, आज और कोई आपको बोलना है और किसी चीज़ में परख शक्ति? हाँ, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर्स में परख शक्ति और निर्णय शक्ति ये सब दोनों साथ में चलती है कि ये करना ये है, इसको ये दवा देनी है इसको। अगर रॉन्ग परख किया, अगर रॉन्ग डायग्नोसिस किया तो ट्रीटमेंट भी रॉन्ग होता है। तो ये भी प्रोफेशन है जहाँ पर परखना होता है। और हकीम वही है, हकीम डॉक्टर। हाँ ऐसे बहुत बहुत अच्छा, ये ऐसे बहुत अच्छे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको जिनको एक्चुअली हिस्टेरिकल बोलते हैं हम, कि ये ना ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, इनको कुछ होता नहीं है। कभी कभार कोई पेशेंट हमसे सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, या तो डॉक्टर्स को परखने के लिए भी पेशेंट आते हैं। और है ना, तो ऐसे लोगों को भी हमको परखना है कि इनको एक्चुअली बीमारी है कि नहीं। कभी कभार पेशेंट्स आते हैं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको दवा किसी और के लिए लेके जानी होती है, किसी और अपना पेपर लेके आते हैं और कहते हैं कि हमको खांसी और सर्दी हो रही है, और हम उनको देखते हैं और हमको उनको दवा लिख देंगे ये सोच के कि ये बीमार है, और लेकिन एक्चुअली वो बीमार नहीं होते, वो किसी और के लिए मेडिसिन लेके जा रहे होते हैं। तो ये भी होता है कि पेशेंट को परखना है और डॉक्टर को, पेशेंट डॉक्टर को भी परखने आते हैं कि ये कितने अच्छे हैं। तो बाबा आगे पूछते हैं कि परख शक्ति कहाँ तक आई है। परख शक्ति की बहुत आवश्यकता है, और इसको इसको बढ़ाने का क्या साधन है। तो उत्तर में आया कि आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति। तो बाबा ने कहा कि आत्मिक स्थिति अव्यक्त स्थिति तो है ही, लेकिन जिन आत्माओं में व्यर्थ जरा भी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे, जो एक ही कार्य में होंगे, जो एक की याद में होंगे और जो एकरस स्थिति में होंगे, ऐसी आत्माएं परख सकेंगी। तो बाबा ने कहा आगे कि अगर व्यर्थ संकल्प है तो बुद्धि में, जब बुद्धि की परख में मिक्सचैरिटी हो जाएगी, तो कहते हैं कि रहस्य निकला कि बुद्धि की सफाई चाहिए। तो जहाँ पर बुद्धि में व्यर्थ नहीं होगा तो योगयुक्त अवस्था होगी, और अगर व्यर्थ और व्यर्थ विकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो वो विघ्न डालते हैं अव्यक्त स्थिति बनने में, और वो शरीर शारीरिक आकर्षण होता है जिधर व्यर्थ होता है, जिधर व्यर्थ होता है उधर शक्तिशाली नहीं रहते। बाबा आगे कहते हैं कि बुद्धि की वीकनेस होती है, थकावट हो जाती है, और वहाँ पर परखने वाला, जहाँ परख नहीं सकते वहाँ निर्णय नहीं कर सकते। तो यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प, तो व्यर्थ संकल्प हमको कहाँ कहाँ आते हैं इसकी चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा इसका जो साधन बता रहे वो है बुद्धि की सफाई। तो व्यर्थ संकल्प हमारे कहाँ कहाँ आते हैं ये हमको चेकिंग करनी है। जैसे कि कोई हमको कुछ बोल देता है तो हम बार बार उस पर विचार करते, बार बार सोचते उसके बारे में, तो बुद्धि थक जाती है ना, तो बुद्धि की वीकनेस होती है। न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते बार बार, एक ही न्यूज़ को हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, देखो कितनी व्यर्थ में रुचि है हमारी। कितने लोगों के पास अलग अलग तीन चार न्यूज़पेपर होते हैं टेबल पर, और उनको लगता है कि ये सिंबल स्टेटस है हमारा, लेकिन है ना वो वही न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो वो न्यूज़ में भी हम वही न्यूज़ बार बार देखते हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो बार बार चैनल चेंज करके वही न्यूज़ को देखते हैं हम। तो वही फिर योग में आता है ना, जैसे वो भाई बोल रहे थे ना कि नरेंद्र भाई का, नरेंद्र भाई मोदी मोदी का मोदी का भाषण सुनते थे तो मोदी का भाषण नहीं आता था, तो जैसे वो एक कोई बोल रहा था कि अशोका सीरियल देखते हैं तो वही आता है। देखो मॉर्निंग में अगर हम 20 मिनट कोई सीरियल देखे या कोई वीडियो देखे और 20 मिनट हमने कोई अव्यक्त मुंडी पढ़ी, दिन भर में हमको वो 20 मिनट की वीडियो बराबर याद रहती है, लेकिन वो 20 मिनट में अव्यक्त मुरली जो पढ़ते हैं, अगर उसमें से एक मुरली का पॉइंट भी अगर हमको याद रहे तो अहो सौभाग्य की बात है। फिर वो 3D होता है और ये 3D नहीं होता है, लेकिन वो कैसे छप जाता है, उसकी एक एक बात याद आती है। जब योग में भी बैठेंगे तो वो याद आता है, क्योंकि व्यर्थ में हमारी दिलचस्पी इतनी है। बीच में माउंट में एक मर्डर केस हुआ था, तो उस दिन क्या हुआ, हम डाइनिंग में बैठे थे रात में, और जो भी अंदर आ रहा है ना वो क्या बोल रहा है कि अरे आज लाइब्रेरी बंद है, अरे आज लाइब्रेरी बंद है। तो फिर मैंने निताई को पूछा क्यों ऐसे सब पूछ रहे कि लाइब्रेरी बंद है, आज क्या हो गया, तो बोल रहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना है सबको, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है ना उसके बारे में, तो सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो कैसी दिलचस्पी हमारी कि पढ़ना है, फिर उसकी चर्चा करनी है, फिर जाके सबको बोलना है। तो एक तो व्यर्थ किसी के बोलने से आता है, एक व्यर्थ ये सब साधनों से आता है, दूसरा हमको कोई कुछ नई भी बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, कुछ नई है ना हमारे पास तो पुरानी बातों को याद करके फिर उसको दोहराते हैं, और फिर उस पे व्यर्थ चलता है हमारा। जैसे कि पुराने जख्म को खुरेदते और खोल खोल के देखते बार बार, तो वो एक व्यर्थ चलता है। दूसरा, अगर हमने किसी को दुख दे दिया तो वो दुखी होके जो आत्मा चली जाती है, वो जितना समय दुख में रहती है उतना समय उसके दुख के वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं, तो वो भी हमारे में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं और थकावट लाते हैं। तो ये हो गया एक व्यर्थ। और जैसे कि कभी कभार पश्चाताप होता है, कभी कभार गिल्ट फीलिंग होती है, उसमें भी हमारा व्यर्थ में समय जाता है। तो बुद्धि की थकावट होती है, कभी हम देखते हैं कि दिन भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब शाम को योग में जाते हैं तो ऐसा लगता है आज बहुत थकावट लग रही है। हाँ, क्योंकि कुछ समर्थ नहीं किया ना दिन भर में, तो थकावट लगती है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि की सफाई, तो हम चेक करें कि कहाँ लीकेजेस है। अगर एक कमरे में 20 खिड़कियाँ हैं, हमने 19 खिड़कियाँ बंद की, लेकिन एक खिड़की भी अगर खुली रखी और बाहर अगर तूफान है तो कचरा अंदर आएगा ही। तो हम चेक करें हमारा व्यर्थ एक एक का इंडिविजुअल का कहाँ से आता है और उसको हम बंद करें, तो उसका सल्यूशन क्या होगा। तो जैसे कि अगर कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत उसको क्षमा कर दे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी क्षमा करते हैं, कि हम उसको लेके बैठते हैं। अगर हमारे कपड़े पर कुछ गिर जाता है तो हम तुरंत उसको वॉश करते हैं, हम उसको रहने नहीं देते। ऐसे नहीं सोचते कि 2 घंटे के बाद वॉश करेंगे या 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, हम तुरंत वॉश करते हैं उसको। हमारे साथ ही ऐसे कुछ हुआ कि एक भाई जी ने हमको इतना बोला इतना बोला तो मुझे लगा अब क्या करूं मैं। फिर मैं वहां से निकल के आ गई अपने रूम पे, मुझे बहुत क्रोध आ रहा था। लेकिन हमने चर्चा की थी ना यहाँ पर कि जब व्यर्थ आएगा तो क्या करने का, अपना कबर्ड साफ करो या तो वॉकिंग। तो मैंने कबर्ड साफ किया तो भी वो व्यर्थ नहीं जा रहा। मैंने सोचा अब निकलो यहाँ से बाहर, रूम के स्नान किया, वॉकिंग निकले, तो रामानुसार क्लास भी ऐसे चला कि क्लास जो सुन रही थी कि इसको सेकंड में भूल जाना चाहिए, इसको दाग नहीं तो गहरा हो जाता है, बुद्धि पर इम्प्रिंट्स पड़ते हैं। फिर भी मैं सोच रही हूँ सोच रही हूँ। फिर एंड जब नक्की का एंड हुआ ना, तब एक पॉइंट याद आई कि ड्रामा की हर पॉइंट, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो मैंने बोला हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं ओपीडी में बैठी थी तब मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं सोचा अभी रूम पर जाके सोना है और शाम का योग भी शायद आज का मिस होगा। लेकिन इनके चिल्लाने से कितना अच्छा हुआ कि नींद चली गई, वॉकिंग हो गई, क्लास सुन ली और अब योग के लिए भी पहुंच गए। हाँ, कपड़ा भी साफ हो गया, तो कपड़े को जल्दी साफ किया, नहीं तो उसको लेके चलते, नहीं तो उसको जमा करके रखते और उसको दिन, और कोई और मिलता तो उसको भी बताते और इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो जितना जल्दी हम इसकी सफाई करें बुद्धि की उतना अच्छा। और पश्चाताप में हमारा टाइम बहुत जाता है, तो पश्चाताप का अर्थ क्या होता है कि जो भी गलती हमने की उसको हमको दोबारा रिपीट नहीं करना है, बस यहाँ पे फुल स्टॉप। लेकिन हम पश्चाताप में रोते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं, तो एक हुआ पश्चाताप। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आपकी है बुद्धि की सफाई, और आगे बाबा कहते हैं कि उनकी है हाथ की सफाई। तो हाथ की सफाई कौन करते हैं? जादूगर। तो बाबा यहाँ जादूगर का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप भी, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से बदल जाते हैं और आप बदलते हो लेकिन आप जल्दी नहीं बदलते हो, आपको टाइम लगता है बदलने में। तो आप सबको एक एक को जादूगर बनना है, तो अगर भिन्न भिन्न स्थान पर इतने जादूगर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो बाबा भी नवीनता चाहते हैं और बच्चे भी नवीनता चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक 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 को ऐसे महसूस हो कि आप सब एक अलौकिक आत्मा अवतरित हुई है। तो यहाँ बाबा हमको कह रहे हैं कि आप अपने आप को अवतार समझो, सदा ये स्मृति में रखो कि मैं इस शरीर में एक अवतरित हुई आत्मा हूँ। जैसे उस दिन की मुरली चल रही थी तो वहाँ बाबा हमसे कह रहे थे कि मेहमान समझो अपने आप को। जब आप मेहमान समझेंगे तो आपको किधर भी अटैचमेंट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अपने को अवतार समझो, जब अवतार समझेंगे तो आपके हर कर्म में अलौकिकता आएगी। तो अवतार कौन होता है? जैसे कि जब कहते हैं ना हिंदू रिलीजन में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब बहुत अत्याचार होता है, तब भगवान अवतार लेके सृष्टि पर आते हैं। विष्णु के 24 अवतार बताते हैं। तो एक बार एक एपिसोड देख रहे थे हम महाभारत का, तो उसमें वो कृष्ण वो आश्रम में जाता है ना, तो परशुराम उसको क्या कहता है कि आपने मुरली बहुत सुनाई, आपने माखन बहुत खाए, आपने लीलाएं बहुत की, अब आप वो करो जो आप करने के लिए आए हो। और वो सुदर्शन चक्र उसको देता है। तो हम भी याद रखें कि हम कौन हैं। हम अगर अपने आप को अवतार समझे तो अवतार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहीं टाइम वेस्ट नहीं करता। उसको किसी से अटैचमेंट नहीं होता। राम को भी दिखाते हैं जब वो वनवास के लिए निकला तो उसका किसी में अटैचमेंट ही नहीं है, इतने आराम से वो सबसे मिल के निकल रहे हैं क्योंकि उसको इतना बड़ा कार्य करना था 14 साल। तो हम अपने आप को अवतार समझे तो बाबा कहते हैं जब आप अपने को बदलेंगे ना तब दुनिया बदलेगी। जब अपने आप को ऐसे बदल देंगे आप, इस महसूसता में रहेंगे तो सृष्टि बदलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा कहते हैं आज बाबा बगीचे में आए हैं, तो बाबा कहते हैं चैतन्य बगीचे में आए हैं। कुछ कुछ वाणी से खुशबू ले रहे, कुछ मस्तक से खुशबू ले रहे, कुछ नैनों से खुशबू ले रहे। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा मस्तक के मणि को देखना है। जब मस्तक के मणि को देखेंगे तो आपकी वृत्ति और दृष्टि शुद्ध सत्प्रधान बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, चंचलता आती है। चंचलता क्यों आती है, आंखों के, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सबसे क्रिमिनल अंग आपका ये जो है वो है आंखें। आंखें कैच करती है और फिर व्यर्थ चालू होता है, तो चंचलता आती है। तो बाबा कहते हैं मस्तक के मणि को देखना है, ना कि शरीर को देखना है। अगर आप शरीर को देखते हो, माना कि आप सांप को देखते हो, और अगर सांप को देखेंगे तो सांप अपना कार्य करेगा, सांप तो काटेगा, सांप में विष होता है। तो हम सोच रहे थे सांप क्या होता है, सांप जैसे प्राणी से को देख के कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा इस शरीर को सांप से कंपेयर कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जब सांप को देखेंगे सांप के समान बन जाएंगे, जब देह को देखेंगे तो देह की वृत्ति में आएंगे ना, देह के समान बन जाएंगे। जैसे कि मेडिकल में दिखाते हैं जब सांप काटता है ना तो दो प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, एक को बोलते हैं हिमाटोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक में वो बुद्धि और नर्व्स को पैरालाइज कर देता है और पेशेंट जो आते हैं वो पैरालिसिस में आते हैं, उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जब अगर हमको ऐसा वाला सांप काटेगा ना तो हमारे होश उड़ जाएंगे, हमको थकावट होगी, हम व्यर्थ में रहेंगे, हमारी बुद्धि बाबा में नहीं लगेगी पर किसी और में लगेगी। और एक होता है हिमाटोटॉक्सिक जिसमें सारी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, आँख नाक मुंह कान सबसे ब्लीडिंग होना चालू होता है। तो हम भी पश्चाताप के खून के आंसू रोएंगे अंत में अगर हमने देह को देखा तो। तो ये हो गया सांप की बात। तो बाबा कहते हैं हमेशा जब मस्तक के मणि को देखोगे ना तो आप माला मस्तक के मणि, बाबा के माला के मणि बनेंगे, बाप दादा के माला के मणि बनेंगे। तो आपको हमेशा मस्तक के मणि को देखना है और इस देह को नहीं देखनी है। जब ऐसे करेंगे आप तो सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी और आप कंप्लीट बन जाएंगे, बाबा ने कहा। और फिर बाबा का कहते कि कंप्लेन कहाँ और कंप्लीट कहाँ, लेकिन सिंधी भाषा में अगर लिखो तो दो बिंदी की फर्क है। तो बाबा कहते यहाँ पर भी दो बिंदियाँ हैं, एक स्वयं बिंदी और एक बाप दादा बिंदी। तो जब आप बिंदी को देखेंगे तो कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी और कंप्लीट बन जाएंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो आप लोग बहुत करते हो बाप दादा के सामने, लेकिन अब क्या प्रतिज्ञा करनी है कि आज के बाद, आज से लेकर सिर्फ मस्तक के मणि को देखेंगे और मणि बनकर सृष्टि के आगे हम चमकेंगे। जब आप मणि बनेंगे तभी आप चमकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। लेकिन आप क्या करते हो, अभी अभी बोलते हो और अभी अभी भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा हमेशा हमारा ऐसे ही होता है ना, हम बहुत सारी प्रतिज्ञा करते हैं, अमृत वेला भी करेंगे और थोड़े देर के बाद वो प्रतिज्ञाएं कम होने लग जाती। तो अभी अभी बोलते अभी अभी भूलते हैं उसको। फिर बाबा आगे कहते हैं कि पांडव जो है वो ज्ञानी तो आत्मा है और शक्तियाँ जो है वो स्नेही तो आत्मा है। तो स्नेही जो है वो योगी है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पे इतनी मेहनत की है तो उसका फल तो देना होगा। फिर आगे बाबा कहते हैं कि हर सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए कि ये कुमार अवतरित होकर सृष्टि पर पधारे हैं। ऐसे बाबा अगर ये समाचार आएगा तो बाबा कहेंगे हाँ मतलब फल आ रहा है, जो बाबा ने हम पे मेहनत की उसका फल है कि एक एक आत्मा ऐसी नजर आए कि ये अवतरित होकर आई है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी लोन लेते हैं, इस शरीर का लोन लेते, दोनों को लोन लेना पड़ता है। तो आप भी यही समझो कि आप भी लोन लेकर आए हैं और निमित्त मात्र सेवा के लिए आए हैं। फिर बाबा आगे रिजल्ट सुनाते हैं कि 6 महीना एक रस रहेंगे या 15 दिन में ही कहेंगे कि क्या करे, करना तो था लेकिन हुआ नहीं। तो बाबा ने कहा कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, फिर दीदी का कार्य हल्का हो जाएगा। कुमारों की भट्टी थी ना यहाँ, तो दीदी का कार्य हल्का हो जाएगा। फिर आगे बाबा आश सुनाते अपनी, बाबा की क्या आश है और बाबा के क्या संकल्प है। तो बाबा की एक एक शुद्ध आश और संकल्प है कि एक एक बच्चा नंबर वन जाए, एक एक बच्चे को नंबर वन जाना है। और ऐसा ना समझो कि नंबर वन कैसे जाएंगे, हम सब नंबर वन कैसे जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसमें महादानी नहीं बनो। इससे एक उदाहरण याद आता है, हम क्लास में बैठे थे, डॉक्टर सचिन ने अपनी माता जी को बोला कि एक पॉइंट सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चों को सुनाने दो, बच्चे सुनाएंगे। तो ऐसे सब नंबर वन जाना है। माता जी कहती कि नहीं बच्चे सुनाएंगे, तो इन्होंने कहा कि है ना सबको आगे जाना है, ऐसे नहीं कि बच्चे आगे जाएंगे और आप पीछे रहेंगे, तो इसमें महादानी नहीं बोलो, बाबा कहते। फिर बाबा ने कहा कि मुख्य दो बातें याद रखना, एक तो मस्तक के मणि को देखना है और सांप को नहीं देखना है, और दूसरा अपने को अवतरित आत्मा समझकर चलना है और अपने को अवतार समझना है। फिर बाबा आगे कहते हैं स्लोगन, बाबा बाप दादा का स्लोगन याद रखना है। तो क्या बाप दादा जो कहेंगे, जो करें कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, वैसे करेंगे वैसे बोलेंगे वैसे देखेंगे, जो बाबा कहेंगे वो सोचेंगे, जो बाबा दिखाएंगे वो देखेंगे। ये आंखें भी बाबा को देख ली है, दे दी है, तो पूरे परवाने बने हो ना। तो बाबा ने कहा कि संपूर्णता अर्थात पूरे परवाने, ये छाप लगाई बाबा ने। फिर बाबा ने कहा आगे ड्रिल्स की बात की कि आपको ड्रिल्स भी करनी है, मन की ड्रिल्स करनी है, 1 सेकंड में आवाज़ से परे और 1 सेकंड में आवाज़ में आए, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प किए और 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प से परे रहे, 1 सेकंड में शरीर लेकर कार्य करें और 1 सेकंड में शरीर के भान से न्यारे हो जाए। तो ऐसी ड्रिल्स करनी है आपको। और बाबा कहते कब ये ड्रिल्स करनी है, ड्रिल्स तो सुबह करी जाती है ना जैसे वहाँ, ये ड्रिल्स भी आपको अमृत वेला विशेष करनी है, भले पूरा दिन करनी है परंतु प्रैक्टिस अमृत वेला करनी है। और अब बाबा कहते हैं ये ड्रिल्स कब करो, तो जब बुद्धि बहुत बिजी होगी तब आपको ये ड्रिल्स करनी है। बाबा कहते हैं कि आपको बहुत सारी परिस्थितियाँ आने वाली है, अनेक तरह की परिस्थितियाँ भयानक ऐसी आएंगी कि अपनी तरफ खींचेंगी, अपनी तरफ आकर्षण करेगी और उसमें आपको अपने आप को स्थित करना है। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि बिजी होगी, जब देखो कि स्थूल कार्य में बुद्धि बहुत बिजी है और सर्कमस्टेंस अपनी ओर खींचने वाले हैं, तब ये ड्रिल करनी है आपको और देखना है कि सफलता आती है। तो हम सोच रहे थे कि हम जब इमरजेंसी में पेशेंट्स को आईसीयू में देखते हैं तो पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालते हैं, कभी वेंटिलेटर नहीं चल रहा होता है, कभी स्टाफ की कमी होती है, कभी पेशेंट के अंदर ट्यूब चला जाता है तो भी ऑक्सीजन ऊपर नहीं आ रहा होता है, और मतलब हम इमेजिन कर रहे थे कि सब कुछ गलत हो रहा है और उसमें बुद्धि की ये ड्रिल करनी है हमको, तो कितना डिफिकल्ट है ये। तो सब अपनी अपनी परिस्थितियाँ सोचे और ढूंढे कि बुद्धि कहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, उस समय हमको ये ड्रिल करनी है बाबा कहते हैं। और जब आप इधर ये ड्रिल करेंगे तब फाइनल पेपर में आपके नंबर आगे आएंगे, तो कितना डिफिकल्ट काम है। तो प्रैक्टिस करना चालू करें कि है ना जब बुद्धि ज़्यादा बिजी होगी, ढूंढे अपने अपने कार्यों में कि कहाँ बुद्धि बिजी होती है, तो वहाँ वहाँ हमको ये ड्रिल करनी है। फिर बाबा कहते हैं तो ऐसे करेंगे तब सफलता मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं पहले भी सुनाया स्नेही आत्माएं, तो स्नेही आत्माएं कैसी होती है, सुदबुद्ध उनकी भूल जाती है, तो आपको स्नेह में ये सब करना है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि ये जो ग्रुप है इसकी विशेषता है कि ये सुनते भी हैं और धारण भी करते हैं, और इनको बाबा टाइटल देते कि ये चात्रक आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं चात्रक आत्माएं हैं और इनको चरित्रवान बनना है, तो चित्र में चरित्र को देखना है तब पात्र बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मुख्य दो बातें जो सुनाई आपको कि एक स्लोगन और एक जो छाप सुनाई, जो स्लोगन सुनाए बाबा ने कि जो देखेंगे जो करेंगे जो कराएंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, और छाप बाबा ने कहा कि पूरा परवाना बनना, तो ये याद रखनी है। तो बाबा ने कहा रिजल्ट अच्छी है लेकिन इसको अविनाशी रखनी है। ओके ओम शांति। तो रिवाइज कर ले, कि पहले बाबा ने कहा परखने की बात की कि परखने के लिए आसुरी संप्रदाय में हम जाते हैं तब परखने की आवश्यकता है, तो विजयी तब होंगे जब परखने की शक्ति होगी। और बाबा ने कहा गोपों को ज्यादा परिस्थितियाँ आती है तो उनको ज्यादा परखने की आवश्यकता है, और परख कौन सकता है जिसमें व्यर्थ संकल्प की कमी हो, जिसमें व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलते हो, जो एक के ही कार्य एक ही याद में हो और एकरस स्थिति में हो। और तो बाबा ने कहा कि बुद्धि की सफाई होनी चाहिए, जब बुद्धि में थकावट वीकनेस नहीं होंगी तब परख सकेंगे और निर्णय कर सकेंगे। फिर बाबा ने आगे सेवा केंद्र पे अवतरित हुई आत्माएं हैं ऐसे सबको लगना चाहिए कि हम एक अवतार है, हम अवतार बनकर आए हैं। इसके बाद पहले बाबा ने जादूगर की बात की कि हाथ की सफाई, उनकी बुद्धि की सफाई, आपकी हाथ की सफाई। फिर बाबा बगीचे में आके चैतन्य बगीचे को देखा बाबा ने। फिर बाबा ने आगे सांप के बारे में कहा कि सांप को नहीं देखना है, मस्तक में चमकते हुए मणि को देखना है। फिर बाबा ने आगे कहा कंप्लेन खत्म और कंप्लीट बन जाना है। फिर प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रत्यक्षता होंगी। फिर हर फिर उसके बाद ड्रिल नहीं, ड्रिल नहीं है। उसके बाद बाबा ने बोला कि लोन लेकर आते हैं तो आप भी समझो लोन लेकर आए हैं। फिर बाबा ने अपनी आश और संकल्प बताया कि सब नंबर वन में जाना है। फिर बाबा ने दो मुख्य बातें याद रखने के लिए कही। फिर उसके बाद बाबा ने स्लोगन याद रखने कहा कि जैसे करेंगे कराएंगे सोचेंगे वैसे ही करेंगे हम। फिर बाबा ने छाप दी कि पूरा परवाना बनना है। फिर बाबा ने ड्रिल्स बताई, तीन ड्रिल्स, और ये ड्रिल्स कब करनी है, जब बुद्धि बहुत बिजी होगी, जब सब तरह से सर्कमस्टेंस होगी आकर्षण करने वाली होगी तब ड्रिल करनी है। और एंड में बाबा ने हमको टाइटल दिया कि आप छात्रक बनेंगे, छात्रक बनेंगे और चरित्रवान बनना है तो फिर आप विजय माला में आने के लिए पात्र पात्र बनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एक मुरली।